हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। फिलहाल तब तक आप सभी थोड़ा रिफ्रेशमेंट एंजॉय कीजिए, उसके बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे पहले सभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया था। नीलामी शुरू होने से पहले मेहमानों के लिए विशेष चाय नाश्ते का भव्य प्रबंध किया गया था। हॉल के एक हिस्से को रॉयल हाई टी लाउंज में बदल दिया गया था, जहां सफ़ेद और सुनहरे थीम में सजी गोल मेज़ें, ताज़े ऑर्किड के फूल और चांदी की सर्विंग ट्रे माहौल को और भी शाही बना रही थीं। विदेशी कुकीज़, बादाम पिस्ता से सजे डेज़र्ट, मिनी सैंडविच, केसर इलायची वाली चाय और इटालियन कॉफ़ी की खुशबू पूरे वातावरण में खुली हुई थी। हल्की शास्त्रीय धुनें बज रही थीं और बड़े बड़े उद्योगपति आपस में धीमी आवाज़ में बिज़नेस और बोली की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। इसी भीड़ के बीच आकांक्षा की मौजूदगी अलग ही चमक रही थी। गहरे मरून रंग के डिज़ाइनर लहंगे में सजी वो हर कदम पर आत्मविश्वास बिखेर रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार सिर्फ एक ही दिशा में जा रही थी, सिद्धार्थ खुराना की ओर। वो जानबूझकर उसके बेहद करीब खड़ी थी, कभी उसकी कोट की कॉलर हल्के से ठीक कर देती, कभी मुस्कुराकर कुछ फुसफुसा देती, ऐसे जैसे सिद्धार्थ सिर्फ उसी का हो। सिद्धार्थ, आज की बोली तुम ही जीतोगे, है ना? उसने हल्के से उसका हाथ थामते हुए कहा, ताकि आसपास खड़े लोग साफ साफ देख सके। उसके इस अंदाज में एक अनकहा दावा था, जैसे वो सबको बता रही हो कि सिद्धार्थ पर पहला और आखिरी हक उसी का है। सिद्धार्थ ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कैमरों की फ्लैश ने उस पल को कैद कर लिया। थोड़ी दूरी पर खड़ी दादी उर्वशी खुराना ये सब देख रही थीं। उनकी आंखों में संतोष और गर्व साफ छलक रहा था। उन्होंने पास खड़ी नैना ओबेरॉय से धीमे स्वर में कहा, देखा नैना, हमारी आकांक्षा कितनी समझदार हो गई है। बड़े लोगों के बीच कैसे खुद को संभालना है ये बखूबी जानती है। नैना ओबेरॉय की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अपनी बेटी को इतने आत्मविश्वास और शान से खड़े देख उनके चेहरे पर खुशी साफ छलक रही थी। मैं तो हमेशा से जानती थी, मेरी बेटी जहां खड़ी होगी वहां सबकी नज़रें उसी पर टिक जाएंगी। उधर आकांक्षा ने एक बार फिर सिद्धार्थ की बाह थामी और बाकी मेहमानों की ओर देखकर शालीन मुस्कान दी, जैसे वो सिर्फ मेहमान नहीं, इस शाम की होने वाली मालकिन हो। चाय की चुस्कियों और हल्की फुल्की बातचीत के बीच माहौल ऊपर से बेहद सभ्य और शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में वही सवाल चल रहा था, जब असली नीलामी शुरू होगी तब कौन किस पर भारी पड़ेगा। वही आर्यन अपने पिता धीरज को देखते हुए बोला, आखिर हमारा इस नीलामी में शामिल होने का मतलब ही क्या है, जब नतीजा हमें पहले से ही पता है। जैसे ही उसने सिद्धार्थ और आकांक्षा की तरफ घूरते हुए ये कहा, धीरज जी ने तुरंत इसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए सख्त स्वर में कहा, चुपचाप जाकर वहां बैठो। तुम जानते भी हो, लोग ऐसे भव्य समारोह में शामिल होने के लिए तरसते हैं, और हमें तो खुद इन लोगों ने इनवाइट करके यहां बुलाया है। इतनी मान सम्मान और इज्जत मिल रही है, सारी मीडिया मौजूद है। तुम क्या चाहते हो कि रायचंद परिवार इन सभी लोगों से पीछे हो जाए? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम ये नेकलेस नहीं जीत पाएंगे, लेकिन कम से कम इसका हिस्सा तो बन रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। ऐसे बड़े सामाजिक समारोहों में शामिल होना बहुत जरूरी होता है, ताकि लोगों की नज़रों में हम बने रहें और लोग हमें भूले नहीं। धीरे धीरे मगर कड़े शब्दों में धीरज ने आर्यन को डांट दिया। वहीं मीरा, जो हल्की लाल आंखों के साथ आकांक्षा और सिद्धार्थ को देख रही थी, कहीं ना कहीं आकांक्षा की जगह खुद को महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि अगर झलक ने उसे धोखा ना दिया होता तो आज किसी न किसी तरह वो आकांक्षा की जगह वहां खड़ी होती। सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इसी बात पर आ रहा था। उसे लग रहा था कि झलक ने उससे अपने इरादे छुपाए। जिस तरह गांव में झलक ने पैसों के बदले सिद्धार्थ से उसकी मुलाकात करवाई थी, उससे मीरा को झलक पर भरोसा हो गया था। वो उसे अपनी दोस्त और बहन जैसा मानने लगी थी, लेकिन जिस दिन अचानक झलक और सिद्धार्थ का वो निजी वीडियो सबके सामने आया, उस दिन मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो सोच रही थी कि झलक इतनी बड़ी धोखेबाज कैसे हो सकती है। अगर वो पहले से ही सिद्धार्थ के साथ रिश्ते में थी तो फिर उसे मिलवाने का नाटक क्यों किया। इसी बात का अलग सा गुस्सा उसके भीतर सुलग रहा था। फिलहाल वो खुद को संभालते हुए मीडिया के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती थी, क्योंकि हर बड़े और नामी परिवार को कवर किया जा रहा था। उधर खानपान का दौर समाप्त होते ही सब लोग अपने असली मकसद की ओर लौट आए। खूबसूरत होस्ट नेहा ने एक बार फिर मंच पर आकर सभी का स्वागत किया और आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस दुर्लभ नेकलेस की असली कीमत का अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है, लेकिन हम इसकी शुरुआत मात्र 10 करोड़ से करते हैं, तो अब आप लोग बोली लगाइए। होस्ट के इतना कहते ही माहौल अचानक गंभीर हो गया। तभी धीरज ने पूरे आत्मविश्वास के साथ 20 करोड़ की बोली लगा दी। धीरज की बोली लगते ही सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। 20 करोड़ की बोली लगाकर वो कहीं न कहीं अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे थे।
वहीं आर्यन को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जानबूझकर उसे वहीं बैठा रहना पड़ रहा था क्योंकि वो अपने पिता को नाराज नहीं करना चाहता था। अपनी आवेश भरी हरकतों और जल्दबाजी के कारण वो कई बार अपने पिता का दिल दुखा चुका था, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में अपने पिता को फिर से निराश नहीं करेगा। इसी बीच धीरे धीरे बोली की रकम और भी बढ़ने लगी। तभी 30 करोड़ की बोली सुनकर धीरज राय चौधरी थोड़ा इधर उधर देखने लगे, फिर कुछ क्षण रुककर बोले, 40 करोड़। जैसे ही उन्होंने दोबारा बोली लगाई, तभी रणविजय 50 करोड़ की बोली के साथ खड़ा हो गया। वो मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की ओर देखने लगा, मानो उसे चुनौती दे रहा हो। तभी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे रणविजय बेटा, सिद्धार्थ तो यहां बैठा है, फिर तुम्हें बोली लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन सिद्धार्थ ने अभी तक अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा था, वो तो बस शांत भाव से बैठा सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का भाव पढ़ पाना मुश्किल था। तभी होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मिस्टर खुराना अभी बोली लगाने के मूड में नहीं है, शायद उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को पहले मैदान में उतरने का मौका दे दिया है। होस्ट की ये बात सुनकर आकांक्षा के तन बदन में जैसे आग लग गई। उसने तीखी नजर से होस्ट की ओर देखा, मानो अपनी आंखों से ही उसे जला देगी। उसे लग रहा था कि होस्ट की नजरें बार बार सिद्धार्थ पर जा रही हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। उधर दादी ने हल्के स्वर में कहा, सिद्धार्थ तुमने अभी तक बोली नहीं लगाई है, लोग कहीं ये न समझ बैठे कि हमारा परिवार इस नीलामी में दिलचस्पी नहीं रखता, इसीलिए मैंने पहले बोली लगा दी थी। सिद्धार्थ कुछ कह पाता उससे पहले ही दादी ने नैना की ओर देखकर कहा, चिंता मत करो, मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धार्थ किसी रणनीति के तहत सही समय पर बोली लगाएगा। तभी अचानक 80 करोड़ की बोली लगाई गई। सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। होस्ट उत्साहित आवाज में बोली, 80 करोड़ की बोली लग चुकी है, क्या कोई है जो इससे आगे की बोली लगाएगा। और तभी अचानक सिद्धार्थ खुराना दबंग अंदाज में खड़ा हुआ और साफ आवाज में बोला, 100 करोड़। सिद्धार्थ की 100 करोड़ की बोली सुनकर सभी के चेहरे उड़ गए। कई लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इतनी बड़ी रकम लगाना आसान नहीं था। अगर कोई 100 करोड़ की बोली लगाता तो उसे अपनी कई संपत्तियों को दांव पर लगाना पड़ सकता था। मीरा ने भी अपने पिता को शांत रहने का इशारा किया, क्योंकि अब मैदान में सिद्धार्थ खुराना उतर चुका था। होस्ट ने खुशी के साथ ऊंची आवाज में कहा, 100 करोड़, हमारे शहर के सबसे प्रभावशाली बिजनेसमैन सिद्धार्थ खुराना ने बोली लगाई है। आकांक्षा के चेहरे पर एक अलग सा तेज चमक उठा। तभी वहां मौजूद मशहूर उद्योगपति विकास लूथरा ने खड़े होकर 120 करोड़ की बोली लगा दी। उनकी बोली सुनकर फिर से हलचल मच गई। होस्ट तुरंत उनके परिवार और प्रतिष्ठा का बखान करने लगी।
सिद्धार्थ अब भी शांत बैठा था। दादी ने नैना की ओर देखा। नैना भी अब पूरी तरह शांत हो गई थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि सिद्धार्थ मैदान में उतर चुका है और उससे टक्कर लेना आसान नहीं। 120 करोड़ की बोली सुनते ही सिद्धार्थ ने बिना देर किए कहा, 140 करोड़। अब तो विकास लूथरा भी थोड़ा हक्का बक्का रह गए। 140 करोड़ किसी भी आभूषण के लिए बहुत बड़ी कीमत थी। विशेषज्ञों के अनुसार उस नेकलेस की अधिकतम अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ थी, उससे अधिक नहीं। लेकिन अब ये सिर्फ कीमत की बात नहीं रह गई थी, ये प्रतिष्ठा, मान सम्मान और समाज में अपनी ऊंचाई साबित करने की लड़ाई बन चुकी थी। कुछ पल की चुप्पी के बाद सिद्धार्थ ने फिर से स्पष्ट स्वर में कहा, 150 करोड़। अब पूरा हॉल सन रह गया। विकास लूथरा धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठ गए। होस्ट ने उत्साह और आश्चर्य से भरी आवाज में घोषणा की, दोस्तों 150 करोड़, हमारे सबसे बड़े उद्योगपति सिद्धार्थ खुराना ने 150 करोड़ की बोली लगाई है। क्या कोई है जो इस बोली को बीट कर सके? कोई है 150 करोड़ से आगे? लेकिन पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था, पर आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी।